ओम शांति। 30 मार्च 1998। यह सारे विश्व तक आवाज कुछ साइलेंस और कुछ साइलेंस की शक्ति द्वारा ही पहुंचेगा। जिसको मन का आवाज पहुंचेगा वह समझो ज्यादा समीप आएगा, और जिसको मुख का आवाज पहुंचेगा उसमें से नंबरवार होंगे। इसलिए अभी यह साइलेंस की विशेषता क्या है और साइलेंस के बल से क्या क्या कर सकते हैं, हो सकता है, इस विषय पर ज्यादा अटेंशन, क्योंकि समय कम है और सेवा विश्व की हर आत्मा को संदेश पहुंचाना है। इसलिए बाप दादा ने कहा कि कुछ सुनाएंगे, क्योंकि निमित्त तो आप हो वायुमंडल में लहर फैलाने के, निमित्त तो आप ही है ना? तो ऐसी लहर फैलाओ, सभी सहयोगी बन जाओ। अभी मन का आवाज मुख्य आवाज से भी ज्यादा काम कर सकता है, तो ऐसे ग्रुप बनाओ जो इस कार्य के रुचि वाले हो और इसकी रिहर्सल करते रहे। जैसे पहले शुरू में याद का अभ्यास किया, सेवा के नए नए प्लान बनाए, तो उससे इतनी वृद्धि हुई ना। अभी जैसे पहली रचना हुई मुख द्वारा डायरेक्ट, फिर हुई मनसा संकल्प द्वारा, ब्रह्मा द्वारा, अभी है शक्तियां द्वारा। जो कहते हैं कि शक्तियों ने बांध चला है, तो यह बांध जो संकल्प द्वारा स्पष्ट आवाज पहुंच जाए, कोई बुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जैसे कोई कोई को स्वप्न पीछे पड़ जाता है, जब तक वह काम पूरा नहीं करता तो बार बार स्वप्न उसको जागृत करता रहता है। कई रिद्धि सिद्धि वाले भी कुछ विधि से करते हैं, लेकिन योग की विधि द्वारा यह आवाज फैले। ऐसे सेवा के प्लान बनाओ, जैसे अभी यह उत्सवों का वर्ष मनाया है, अभी वह तो हो गया, अभी फिर ऐसी कोई लहर फैलाओ जो विहंग मार्ग की सेवा हो। मुख के विहंग मार्ग की सेवाएं तो बहुत की, उसके रिजल्ट तो है ही। अभी फिर कोई नवीनता, समझा? देखेंगे कौन कौन इसमें नंबर लेते हैं। 30 मार्च 1998। कल सुना था कि मनोबल की सेवा भी होनी चाहिए। मन का आवाज है संकल्प, तो यह सारे विश्व तक आवाज कुछ साइंस कुछ साइलेंस की शक्ति द्वारा ही पहुंचेगा। जिसको मन का आवाज पहुंचेगा वह समझो क्या ज्यादा समय पाएगा, और जिसको मुख का आवाज पहुंचेगा वो नंबर वार। इसलिए अभी यह साइलेंस की विशेषता क्या है और साइलेंस के बल से क्या क्या कर सकते हैं, हो सकता है, इस विषय पर ज्यादा अटेंशन, क्योंकि समय कम है और सेवा विश्व की हर आत्मा को संदेश पहुंचाना है। तो साइलेंस की विशेषता क्या है और साइलेंस के बल से क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, इस विषय पर ज्यादा अटेंशन देना है। किस विषय पर? साइलेंस की विशेषता और साइलेंस के बल से क्या क्या हो सकता है, और दूसरा है साइलेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए। बाबा जब साइलेंस शब्द का प्रयोग करते हैं तो हिंदी में शांति की शक्ति, इस तरह इसका अर्थ होता है। साइलेंस का बल अर्थात केवल मौन नहीं, साइलेंस बल अर्थात योग की शक्ति, आत्मिक बल। तो साइलेंस की विशेषता क्या है और साइलेंस के बल से क्या क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है साइलेंस के बल से, या साइलेंस की विशेषता क्या है, या फिर साइलेंस की पावर, या फिर साइलेंस कहां कहां जीवन में प्रयोग करना चाहिए, क्या कहेंगे? साइलेंस को कहां कहां प्रयोग करें जीवन में, सबसे पहले यहां से चालू करते अपने ऊपर। हाँ, अपने ऊपर ही कहां कहां करना है, कब कब करना है और कहां कहां करना है, जीवन की कौन कौन सी परिस्थितियों में करना है। साइलेंस का प्रयोग हर परिस्थिति में। जब क्रोध आए तब तो सबसे पहला है आर्गुमेंट्स। जब हाँ हलचल वाली परिस्थिति, एक तो कहा आर्गुमेंट, जब क्रोध कर रहा है कोई, आर्गुमेंट कर रहा है, डिबेट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, फाइट कर रहा है, इस परिस्थिति में साइलेंस का प्रयोग किया जाए। तो हम सबसे पहले स्थूल साइलेंस की तरफ आते हैं, फिर सूक्ष्म साइलेंस में जाएंगे। तो सबसे पहले स्थूल साइलेंस, तो एक कहा आर्गुमेंट्स जब हो रहा है तब चुप हो जाना, पहले स्थूल साइलेंस फिर सूक्ष्म साइलेंस। सूक्ष्म साइलेंस अर्थात योग बल, स्थूल साइलेंस अर्थात मुख का मौन। तो एक तो आर्गुमेंट्स, फाइट्स, झगड़ा, तब मौन हो जाना। दूसरा कोई कोई क्रिटिसाइज कर रहा हो, वो वैसे झगड़ा, अच्छा चलो इसको भी लिया जा सकता, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, विरोध कर रहा है, निंदा कर रहा है, ग्लानी कर रहा है, हाँ ब्लेम कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, उस समय चुप हो जाना। तीसरा नहीं, वो सूक्ष्म है, स्थूल साइलेंस, मौन, मुख का मौन का प्रयोग, चुप कब हो जाना है, चलो ऐसे लो इसको, कहां कहां चुप हो जाना, ज्यादा दर्द हो तो अच्छा, अगर कोई चिल्ला रहा है ज्यादा दर्द से नहीं नहीं वो नहीं, दूसरा बताओ, गॉसिप्स, पहला है आर्गुमेंट, दूसरा है क्रिटिसिज्म, तीसरा है गॉसिप्स, झरमुई झगमुई। अगर हम अचानक ऐसी संगठन के बीच चले गए, ऐसे लोगों के बीच चले गए जहां पर निंदा चालू है दूसरों की, या हमारे ही किसी साथी की निंदा चालू है, उस समय गॉसिप्स के समय मौन हो जाना। कमेंट्स करना चालू है एक दूसरे के प्रति, टीका टिप्पणियां करने चालू है, वहां पर चुप हो जाना। अगर हम हाँ में हाँ मिलाते गए तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी सहमति है, वो जो कुछ बातें उस व्यक्ति के प्रति कह रहे हैं हम भी उसमें राजी हैं। और हम यदि किसी की निंदा करते हैं तो अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, क्या होगा, दुगुनी निंदा होगी। वहां एक तो रहना ही नहीं है, हो सके तो उस दिन भी सुनाए थे ना 10 पॉइंट्स, कौन से पॉइंट थे, पर टॉपिक क्या था, किस चीज के थे, नहीं पॉइंट थे, टॉपिक क्या था, टॉपिक क्या था, टॉपिक क्या था, किस बातों की थी, वो व्यर्थ संबंध संपर्क, व्यर्थ संबंध संपर्क भी क्या कर देता है, खाता खाली कर देता है, अकाउंट खाली कर देता है, तो उसकी वो बातें थी। उसमें और कुछ पावरफुल बातें हैं, वो कभी और सुनाएंगे। तो यहां बाबा कह रहे साइलेंस, पहले तो स्थूल साइलेंस, तो आर्गुमेंट्स, फाइट्स, क्रिटिसिज्म, गॉसिप्स, चौथा कमेंट्स। हाँ एक बार भी सुनाया था ना, एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ कह दिया जो फिर बाद में पता चला कि वैसा था ही नहीं, फिर जज ने क्या किया, उसको क्या कहा, एक तकिया में फेदर्स जो होते हैं, पंख होते हैं, उसको फैला दो सारी जगह पर, और फिर दूसरे दिन कहा उसको अभी चुन के लाओ। तो कैसे चुनेगा, वो तो उड़ गए सारे, उसी तरह उसका दूसरा वर्षन भी है इस स्टोरी का कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोप करता है या कहता है इसने ये गलती की या चोरी की, उसको पकड़ा जाता है, बाद में पता चलता है उस व्यक्ति ने वो चोरी की ही नहीं थी। तो जिसने जिसके ऊपर झूठा आरोप लगाया था वो अब उस व्यक्ति को के ऊपर केस करता है कि आपने ये झूठा आरोप कैसे लगाया। तो कहता है झूठा आरोप तो लगाया पर इसे हुआ क्या, आप तो छूट गए ना, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। तो जज उसको कहता है कि जो जो तुमने इसके ऊपर आरोप लगाया है वो एक कागज के ऊपर लिखो सारे, फिर इसके टुकड़े टुकड़े करो कागज के और बिखेर दो यहाँ वहां और कल आ जाना। तो दूसरे दिन आता है और फिर उसको कहता है वो जो जो टुकड़े थे कागज के वो लेके आओ, वो कैसे लाएगा, हवा ने तो बिखेर दिया है उसे। तो हम क्या कह रहे हैं किसके बारे में, वो घातक होते हैं बहुत। नेक्स्ट, स्थूल साइलेंस का प्रयोग कहाँ करना है, किससे गलती, हमसे या किसी और से। हाँ, फैलानी नहीं है। हाँ, अगर कोई गलती करता है कोई बात करता है तो उसकी बात सब जगह फैला देना। हाँ, उस समय थोड़ा पेशेंस, अगर उसी समय उसको डांट, हमने ये भी देखा है कि उसी समय उसको डांट दिया जाए तो उसके बाद में, ये छोटे बच्चों के ट्रेनिंग में काफी सिखाया जाता है, माँ बाप बच्चों को डांट, बच्चे ने कोई गलती किया और उसने सिंसियरली आके कह दिया तो उसको डांट मिलती है, अभी अगली बार वो नहीं बताता है, फिर स्कूल में जो जो बातें होती है वो नहीं बताता है फिर, क्योंकि उसको पता है पिछली बार बताया था तो डांट पड़ी थी, तो इसके बाद अगली बार से वो झूठ बोलना चालू करता है। फिर चाइल्ड साइकोलॉजी में ये बातें बताई जाती है कि फिर वो झूठ बोलना चालू करता है। हाँ, फिर उनको ये भी सिखाया गया कि भाई आप झूठ नहीं बोलो, जो है वो सत्य बता दो तो आपको डांटेंगे नहीं। परंतु फिर स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं, ये भी वो उसको वेपन बना लेते हैं, फिर माँ बाप इसी को प्रयोग करते हैं, वो कहते तो है डांटेंगे नहीं पर डांटते हैं फिर वादा करने के बाद भी। तो चाहे छोटा बच्चा है या कोई भी है, उस बात को फैलाना, वहां पर मौन हो जाना और चारों तरफ शोर हो तो चुप हो जाना। कौन सा शोर, क्या बज रहा तो उससे क्या होगा कोई यदि चुप लिसनिंग के समय, सुनते समय यदि कोई सुना रहा है उसको बीच बीच में बार बार टोका जाए, वो एक अच्छी बात नहीं है। तब क्या करना है, तब चुप रहना है। कोई कुछ सुना रहा है, हमारे पास आकर अपनी बात कह रहा है, या दो लोग अपनी आपस में बात कर रहे हैं, उसके बीच में कुछ कहना, वो जो है वो भी वहां साइलेंस का प्रयोग किया जाए। खाते समय साइलेंस का प्रयोग किया जाए, मुख का मौन, ये तो सबसे मुख्य धारणा है ब्राह्मणों की। भोजन करते समय मौन, चाहे बाप की याद हो या ना हो, कम से कम मुख का तो मौन करो, क्योंकि जब बात कर रहे हैं तब तो याद है ही नहीं, चलो नहीं कर रहे हैं तो कोई कहेंगे ना कि देखो मौन तो रखते परंतु याद कहाँ है। परंतु फिर भी उनकी स्थिति उनसे अच्छी है जो बात करते करते भोजन कर रहे, इसके लिए भोजन मौन में, मुख का मौन। हाँ, जो वो तो बोला पहले ही, उसके पहले का पॉइंट वही था, सुनते समय लिसनिंग। नेक्स्ट, हाँ ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब हम अकेले हो तो हमारी मनुष्य की ये टेंडेंसी है, उसकी ऐसी उसका स्वभाव है कि वो उस साइलेंस को फिल करता है दूसरी चीजों से, रेडियो, टीवी, गीत या कोई भी आवाज वाली एक्टिविटी से। उसके लिए साइलेंस में रहना बड़ा मुश्किल है जब अकेला हो व्यक्ति, When the home is silent, that time you should remain silence, in silence. तो जब कोई ना हो, एकांत में हो, तब उस एकांत को हम और चीजों से भरना चाहते हैं, आवाज वाली चीजों से, गीत वो तो चलो अच्छा है, परंतु इस संसार में साइलेंस में बहुत कम रहना चाहते हैं लोग, साइलेंस को भरना चाहते हैं दूसरी बाहरी चीजों से, तो वहां पर तो ये तो हो गया स्थूल साइलेंस। फिर है मुख का, फिर है मन का मौन, योग बल, आत्मा का बल, आत्मिक बल, आत्मिक शक्ति, शांति की शक्ति। तो बाबा ने कहा शांति की शक्ति द्वारा ही पहुंचेंगे, जिसको मन का आवाज पहुंचेगा वह समझो ज्यादा समीप आएगा, और जिसको मुख का आवाज उसमें नंबरवार, आत्माओं को आंतरिक टचिंग हो, उनके हृदय को टच हो जाए, वो बात है। जब आंतरिक टचिंग हो जाती है तो फिर बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सतही व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है, सतही। जब दिल से लग जाती है कोई बात, और जो दिल से बात जो लगती है वो साइलेंस के बल से लगती है। यज्ञ में एक उदाहरण है, हृदय पुष्पद आदि ने अपने अनुभव में लिखा है शायद, कि उनके पिताजी बहुत व्यसनी थे, दारू वगैरह बहुत पीते थे, तो जब बाबा के पास लेके आए उनको, और मम्मा, बाबा ने पहले बात की और फिर मम्मा से कहा कि इनको थोड़ा ज्ञान स्पष्ट करो, तो मम्मा की जो एक ही बात उन्होंने सुनी और सब छोड़ दिया जो भी बुरी आदतें थी। मम्मा ने उनसे कहा कि ये देह तुम्हारा मंदिर है और आत्मा अनादि स्वरूप में पवित्र है, तो ये देह को मंदिर में हम कभी मांस मदिरा कभी नहीं देते हैं, तो आप क्यों देते हो। बस ये बात उनको ऐसी लग गई कि उनके घर में जितनी कीमती बोतल थी सारी दारू की, वो एक एक करके पकड़ के फेंकने लगे बाहर। उनके भाई ने कहा कम से कम हमें तो दे दो, फेंको तो नहीं, तो आपने छोड़ दी तो ठीक है, पर ये बहुत महंगी बोतल तो मैं तो नहीं खाऊंगा, किसी और को भी पाप नहीं करने दूंगा। तो जब बात दिल से लगती है तो दिल से लगने का साधन है मन की शक्ति, साइलेंस का बल, आत्मिक बल, योग का पावर, पावर ऑफ साइलेंस। नहीं तो वो बोल साधारण से बोल हो जाते हैं, उस बोल में शक्ति हो, और वो शक्ति आत्मिक बल से ही आएगी, नहीं तो साधारण से बोल रह जाते हैं। तो जिनको मन का आवाज लगेगा वो क्या होंगे, ज्यादा समीप आएंगे, और जिनको मुख का आवाज उसमें नंबरवार हो जाएंगे। इसलिए अभी ये साइलेंस की विशेषता क्या है और साइलेंस के बल से क्या क्या कर सकते हैं, हो सकते हैं, इस पर ज्यादा अटेंशन, इस बल से क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर आज सभी चिंतन करें, साइलेंस के बल से क्या क्या हो सकता है, हम कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुख से नहीं कर सकते, शब्द से नहीं कर सकते, स्वर से नहीं कर सकते, वर्ड से नहीं कर सकते, स्पीच से नहीं कर सकते, परंतु साइलेंस से कर सकते हैं, उसके ऊपर सभी चिंतन करें। और सेवा विश्व की हर आत्मा को संदेश पहुंचाना, इसलिए बाप दादा ने कहा है कि कुछ सुनाएंगे, क्योंकि निमित्त तो आप ही हो वायुमंडल में लहर फैलाने के, तो ऐसी लहर फैलाओ, अभी सहयोगी बन जाओ, अभी मन का आवाज मुख के आवाज से भी ज्यादा काम कर सकता है, तो ऐसे ग्रुप बनाओ जो इस कार्य के रुचि वाले और इसकी रिहर्सल करते हो। तो इसकी रिहर्सल करनी है, इसमें रुचि हो, इंटरेस्ट। कुछ दिन पहले बाबा ने हॉबी की बात की थी, विट्ठल भाई किस में हॉबी होनी चाहिए, दो दिन पहले मुरली थी, ऐसी बात कही है हॉबी के बारे में जो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं कही होगी। किस बात की हॉबी होनी चाहिए तुम्हें, पूरा वर्षा लेने की हॉबी तो सेवा की होगी। जैसे पहले शुरू में याद का अभ्यास किया, सेवा के नए नए प्लान्स बनाए, तो उससे इतनी वृद्धि हुई ना। अभी जैसे पहली रचना हुई मुख द्वारा डायरेक्ट, फिर हुई मनसा संकल्प द्वारा, ब्रह्मा द्वारा, अभी है शक्तियों द्वारा। जो कहते हैं शक्तियों ने बांध चलाए, तो यह बांध जो संकल्प द्वारा स्पष्ट आवाज पहुंच जाए, कोई बुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आत्माओं को क्या अनुभव हो, कोई बुला रहा है उनको, पहले उनको लगे ये हमारे क्लोज रिलेटिव है, नजदीक के संबंधी है, पहले रिलेशन फिर कनेक्शन, यही है वही है, यही है वही है, ये अनुभव आत्माओं को, यही गाइड है, यही मास्टर है, यही मैसेंजर है, यही एंजल है, तो ये उनको अनुभव हो आत्माओं को। उसके लिए इन इन स्वरूपों में हमें टिकना होगा पहले तो। तो क्या लगे उनको कोई बुला रहा है, हमने कुछ कहा नहीं, परंतु उनको टचिंग हुई कि ये बुला रहे हैं, उनको लगे कि इनके पास कुछ है, इन्होंने कुछ पाया है, इनके जीवन में कुछ प्राप्ति है, कुछ अनुभव है, कुछ खजाना है, और हम रिक्त है, हम खाली है, भले चांद पर चले गए, अगले संडे की मुरली में है, पर उनको लगेगा कुछ नहीं पाया, अंदर अनुभव नहीं है। तो जैसे कोई कोई को स्वप्न पीछे पड़ जाता है, जब तक वह काम पूरा नहीं करता तो बार बार स्वप्न उसको क्या करता है, जागृत रखता है, धुन लग जाती है किसी किसी को, बस करना है, बस करना है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, और जिसको भी ऐसी धुन लग जाए, यही वास्तव में विधि है, धुन लग जाना, उसी का ही चिंतन बार 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 बार, वही एक विचार ऑब्सेशन, जैसे माइंड को कैप्चर कर लिया है उस संकल्प ने, उसके अतिरिक्त और कोई संकल्प नहीं। कई रिद्धि सिद्धि वाले भी कुछ विधि से करते, लेकिन योग की विधि द्वारा यह आवास फैले, ऐसे सेवा के प्लान बनाओ जैसे अभी यह उत्सव का वर्ष मनाए, अभी वह तो हो गए, अभी फिर ऐसी कोई लहर फैलाओ, तो विहंग मार्ग की सेवा हो। विहंग मार्ग अर्थात विहंग किसे कहते हैं, पंछी, पंछी, इतनी तेजी से सेवा हो, विहंग मार्ग की सेवा, मुख की विहंग मार्ग की सेवाएं तो बहुत की, उसकी रिजल्ट तो है, अभी फिर कोई नवीनता, समझा बाबा, हमेशा ही नवीनता की बात करते, हमेशा नवीनता लानी है, नवीनता लाओ, नवीनता लाओ, नवीनता लाओ, हर बात में नवीनता लानी है, समझा। देखेंगे कौन कौन इसमें नंबर लेता है, हर चीज में नवीनता। तो यहां एक जो बात कही है कि जैसे कोई कोई को स्वप्न पीछे पड़ जाता है, जब तक वह काम पूरा नहीं करता तो बार बार वह स्वप्न क्या करता है, उसे जागृत रखता है। कोई भी मन में विचार आ गया कि हमें ये करना है, और वो इतना तेजी से अगर आ गया कि जब तक ये पूरा ना हो जाए तब तक चैन से नहीं बैठता है व्यक्ति, ऐसी स्थिति पुरुषार्थ में आ जाए, लौकिक में तो बहुत आती है ऐसी, संसार में स्टूडेंट्स के पास आती है ऐसी परिस्थिति, जब तक एग्जाम नहीं होती है तब तक सब छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं, टीवी देखना छोड़ देते हैं, खेलना छोड़ देते हैं, दोस्तों के साथ जाना छोड़ देते हैं, केवल केवल पढ़ाई करते रहते दिन रात। तो वही यहां पर लाना है। एक छोटा सा लड़का था जो गया नौकरी करने के लिए, नौकरी मांगने के लिए एक व्यक्ति के पास, तो उसको ऑफिस बॉय करके चुना गया कि हाँ तुम साफ सफाई ये सब करने के लिए विदेश में, तो उसको चुन तो लिया गया, पर अंत में उस मैनेजर ने पूछा तुम्हारा मेल आईडी क्या है, उसने कहा मेल आईडी मेरे पास कंप्यूटर ही नहीं है, मेल आईडी मेरे पास है ही नहीं। उसने कहा मेल आईडी नहीं है मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जीवन ही नहीं है, और जिसका जीवन ही नहीं है वो काम क्या करेगा, इसके लिए तुम जा सकते हो। तो बहुत उदास हो गया कि मेरे पास मेल आईडी नहीं है और मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, आज के युग में तो जरूरी है, तो उसको घर भेज दिया। वो बेचारा अकेला गया तो क्या करे, तो उसके पास कुछ दिखाया, $10 थे, $10 से उसने कुछ फल खरीदे और फिर फल एक दो घर में जाके बेचे, घर में जाके खुद कुछ पैसे मिले। फिर दूसरे दिन सोचा ये काम थोड़ा मैं थोड़ा और जल्दी करता हूँ, तो सुबह सुबह जल्दी उठ गया, फिर जो पैसे थे उससे फल खरीदे और फिर और बहुत जगह बेचे, देर रात तक बेचे, फिर उसको उसको थोड़ा $60 मिले, फिर थोड़े और पैसे मिले, फिर सोचा उसने कि थोड़ा अभी ज्यादा फल खरीदूं ताकि ज्यादा बेच सकूं। फिर करते 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 उसने जैसे एक बिजनेस चालू कर दिया, छोटा सा चालू किया था, फिर बड़ा होते 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 दिखाया है कि बहुत बड़ा बन गया बिजनेसमैन। और एक दिन फिर उसके पास, और यही काम में वो लगा रहा और थोड़ा अमीर हो गया, फिर उसको लगा कि थोड़ा भी इंश्योरेंस करना चाहिए, तो इंश्योरेंस एजेंट को बुलाया अपना इंश्योरेंस करने के लिए, इंश्योरेंस किया। इंश्योरेंस एजेंट ने पूछा कि आपका मेल आईडी क्या है, तो उसने कहा मैं तो कंप्यूटर भी नहीं है, मेरे पास मेल आईडी भी नहीं है। उसने कहा बिना मेल आईडी के तुम इतने महान बन गए, सोचो अगर आपके पास मेल आईडी होता तो क्या बनते हो। कहते हाँ अगर मेल आईडी होता तो आज वही ऑफिस बॉय वहां होता। लगन, स्वप्न, जैसे किसी को धक्का मिलता है ना कोई, उसके बाद एकदम से ये हो जाता है व्यक्ति। हमको हमारे जीवन का एक प्रसंग याद है, जब हम बहुत मेडिकल में नए थे और हमको एक डॉक्टर के पास भेजा गया, नहीं हाँ MBBS में, जब सेकंड MBBS में थे तो हमारे एक रिश्तेदार थे, उनको हार्ट अटैक आ गया था बड़ा, तो हमारे पिताजी हमसे मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा चलो उनको मिलने जाते हैं, हमारे मामा थे उनको मिलने हमको लेके गए उनके पास हॉस्पिटल में, हम तो सेकंड MBBS में थे, तो हम मिले। उसके बाद में हमारे पिताजी ने कहा जाओ डॉक्टर जैसे आके मिलो अंदर, हमने कहा हम नहीं मिलेंगे डॉक्टर से वगैरह, हमको समझ में नहीं आता है, मतलब अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको क्या पता क्या करना है, तो फिर भी हमको जबरदस्ती धकेल दिया और भेज दिया। तो हमने पूछा अभी उनका कैसा है, क्या करना है तुमको, क्या पता करना है, तो हमको डायग्नोसिस तो पता था हार्ट अटैक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन MI हुआ है, तो उसने पूछा, वो डॉक्टर बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने बोला तुमने क्या क्या पढ़ा है मायोकार्डियल हार्ट अटैक के बारे में, तो हमने कहा अभी, उन्होंने सामने बड़ी किताब रखी थी मेडिसिन की जो मेन बुक होती है हैरिसन, जो कि केवल पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं लोग, MBBS में नहीं पढ़ते, ये किताब देखी है, मैंने कहा हाँ ये हैरिसन है, इसको पढ़ा है क्या तुमने, मैंने कहा नहीं पढ़ा, तो उन्होंने कहा मैंने इसको 20 बार पढ़ा है, ये इससे पहले कि तुम मुझे कुछ पूछो पहले इसको पढ़ो, बाद में ही मुझसे क्वेश्चन पूछना तबीयत कैसी है और क्या हुआ है और ECG में क्या है। तो एकदम धक्का लग गया हमको ये बात सुनकर, हम सीधा गए वहां से निकले और जो छोटी किताब थी सब लोग जो पढ़ते हैं डेविडसन, उसको हमने फेंक दिया और सोचा, हमने संकल्प किया ये हैरिसन ही पढ़नी है अभी हमको। जैसे उस डॉक्टर ने हमको निकाल दिया आउट। तो हमने सोचा हैरिसन ही पढ़ेंगे और फिर उस सेकंड MBBS में ही हमने हैरिसन खरीदी। लोग कहते हैं ये फेल हो जाएगा, ये किताब देख के सिर पे हाथ रखते थे क्योंकि वो किताब MBBS में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, दो वॉल्यूम्स है ऐसी बड़ी बड़ी, तो छोटी होती है वो डेविडसन पढ़ी जाती है, वो तो PG में पढ़ते हैं, पर ऐसा हमको धक्का दिया उस डॉक्टर ने खतरनाक। हाँ तो तभी से फिर हमने वो तब से, मतलब उसमें एक एक चीज का, जैसे एक टॉपिक अगर मलेरिया है उसमें 10 पेजेस है, छोटी किताब में 2 पेजेस में पूरा हो जाता है, एग्जाम के लिए उतना काफी है, एग्जाम के लिए वो समझना जरूरी नहीं होता है, एग्जाम में पॉइंट्स लिख दो पास, और सबको पास ही होना होता है ना, किसको समझना है और क्या करना है। तो जब धक्का मिलता है तो फिर दिन रात लग जाता है व्यक्ति उसके पीछे, उसके लिए भी हमको पैसे जमा करने, पैसे नहीं थे और पैसे मांगने नहीं थे किससे, तो उसके लिए भी टाइम लगा, पर वो सारी जो प्रोसेस थी उससे मन की भूमि तैयार हुई थी। जब दूसरे दिन एग्जाम थी, हमारा फर्स्ट रीडिंग ही चल रहा था, क्योंकि लोगों का रिवीजन करते ना एग्जाम के पहले, ये हो गया अभी सेकंड रिवीजन, हमारा फर्स्ट रीडिंग चालू रहता था तब, ओम शांति।